भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता थारू अध्याय एक, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, श्लोक संख्या एक। सबने निकाल लिया? हाँ, मेरे पीछे बोलिए। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्तमः मामकाः पाण्डवाश्चैव किम् अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किम् अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किम् अकुर्वत संजय। शब्दार्थ बोलिए। धृतराष्ट्रः उवाच राजा धृतराष्ट्र ने कहा धर्म क्षेत्रे धर्म भूमि तीर्थ स्थल में कुरुक्षेत्रे कुरुक्षेत्र नामक स्थान में समवेताः एकत्र युयुत्सवः युद्ध करने की इच्छा से मामकाः मेरे पक्ष पुत्रों पांडवाः पांडु के पुत्रों ने च तथा एवं निश्चय ही किम क्या अकुर्वत किया संजय। हे संजय, अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। धृतराष्ट्र ने कहा हे संजय धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो यहाँ धागा लगाकर सब लोग प्रार्थना निकालिए। हेलो, मेरे साथ बोलिए। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन सलकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदांधिकं। वंदेहं श्री गुरो श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सह गण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पितरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास्तादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्लोक फिर से निकालिए, श्लोक को समझेंगे। धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र ने कहा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में समवेता युद्धवान एकत्रित हुए युद्ध की इच्छा वाले मामकाः पांडवाश्च मेरे पुत्रों ने और पांडु के पुत्रों ने किम अकुर्वत क्या किया संजय हे संजय। तो धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं कि मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए हैं युद्ध करने की इच्छा से। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की भगवद गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य सार रूप में दिया हुआ है। इसमें ये उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवद गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। तो यहाँ प्रभुपाद जी क्या बताते हैं कि भगवद गीता बहुपठित आस्तिक विज्ञान है। पहली बात तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवद गीता एक विज्ञान है, साइंस। भगवद गीता एक साइंस है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई मान्यता हो अपनी, नहीं, विज्ञान। तो ये भगवद गीता की जो पुस्तक है ये पाठशालाओं में इसकी शिक्षा देनी चाहिए क्योंकि विज्ञान है। ये ऐसा नहीं है कि भाई ये हिंदू धर्म हिंदुओं के लिए है या मुसलमानों के लिए है या भारतीयों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। जैसे विज्ञान, तो विज्ञान जो है हिंदुओं के लिए मुसलमानों के लिए है, ऐसा नहीं कि हिंदुओं के लिए है या मुसलमानों के लिए है या भारतीयों के लिए है। विज्ञान का मतलब क्या है, विज्ञान। तो वो विज्ञान जो है भारत में भी है और जो है अमेरिका में भी है, चीन में भी है, विज्ञान है ना, हिंदुओं के लिए भी है, मुसलमानों के लिए, सबके लिए है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं भगवद गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है। बहुपठित का मतलब क्या है, बहुत लोगों के द्वारा जो पढ़ा जाता है। भगवद गीता एक ऐसा विज्ञान है जो सबसे ज्यादा जिसको पढ़ा गया है और पढ़ा जा रहा है, लोग पढ़ रहे हैं। और आस्तिक का मतलब क्या है, आस्तिक शब्द बना है अस्थि से, अस्थि मतलब ईश्वर का अस्तित्व है। भगवद गीता में श्री भगवान, श्री भगवान वाच हमेशा आता है, श्री भगवान वाच, तो श्री भगवान बोल रहे हैं। तो ये आस्तिक विज्ञान है। बहुत जो आजकल का जो विज्ञान है वो क्या है, नास्तिक विज्ञान है कि नहीं। आजकल के विज्ञान में भगवान की कोई बात ही नहीं आती, भगवान है ही नहीं, भगवान को नहीं मानते। तो भगवद गीता ऐसा विज्ञान है जिसमें भगवान को केंद्र बनाया गया है, भगवान जिसमें केंद्र है ना, भगवान को समझने का विज्ञान है ये भगवद गीता। कैसे भगवान को समझा जाए, कैसे भगवान से प्रेम किया जाए, ये एक ऐसा विज्ञान है। और प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं इसमें, ये उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से भगवद गीता का अध्ययन करे। भगवद गीता का अध्ययन करना चाहिए कैसे, श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से अध्ययन करना चाहिए भगवद गीता का। तो भगवद गीता का अध्ययन करना है श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से। क्यों, क्योंकि भगवान कहते हैं भक्त्या माम भी जानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः। कि कोई व्यक्ति मुझे कैसे जानता है, भक्ति के द्वारा ही जान सकता है। जो भक्त नहीं है वो भगवद गीता को नहीं जान सकता है। इसलिए जो भक्त नहीं है वो भगवद गीता की व्याख्या करते हैं तो क्या करते हैं, भगवान को निकाल देते हैं, भगवद गीता में से भगवान को निकाल देते हैं। और जब भगवद गीता में से भगवान को निकाल दिया तो क्या बचा, शून्य, जीरो। फिर भगवद गीता का कोई मतलब ही नहीं है, है ना, तो बिल्कुल अनर्थ हो जाता है, है? कोई अर्थ ही नहीं है। लेकिन उस प्रकार की टीकाएं जो है चल रही हैं, अब भक्तों के द्वारा गीता की जो टीकाएं हैं ये बिल्कुल जो है ना अनर्थ है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवद गीता में ही है। हाँ, क्योंकि अर्जुन ने श्रवण किया। भगवद गीता एक ऐसी पुस्तक नहीं है कि खाली ईश्वर के शब्द हों बस, ये करो वो करो। तो भगवद गीता में केवल ये नहीं है कि भाई भगवान के केवल आदेश हैं और आपको बस सुनना है, मानना है बस, और कोई जो है आप प्रश्न नहीं कर सकते हैं, कोई जो है संघ का समाधान नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसको अर्जुन ने श्रवण किया और भगवद गीता में ही अर्जुन के प्रश्न है, अर्जुन ने कैसे श्रवण किया, है ना। तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल है, बहुत ही व्यवहारिक है भगवद गीता। आगे प्रभुपाद लिखते हैं कि यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवद गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। मतलब उसी गुरु परंपरा से अगर किसी को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो, कौन सी गुरु परंपरा, जैसे अर्जुन कृष्ण से सुन रहे हैं, है ना, उसी गुरु परंपरा में। उसी गुरु परंपरा का मतलब कि कृष्ण से जो चली आ रही है गुरु परंपरा, है ना। तो अभी हमारी जो गुरु परंपरा है वो कैसी है, कृष्ण इसमें लिखा है, इस भगवद गीता में गुरु परंपरा दिया हुआ है, भगवान कृष्ण से ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ ज्ञान, और ब्रह्मा जी से नारद जी को, और नारद जी से व्यास जी को, है ना, व्यास जी से मध्वाचार्य को, इस प्रकार से 32वें आचार्य हैं प्रभुपाद जी, है ना। तो वो परंपरा जो है ना, परंपरा वही है, चाहे साक्षात कृष्ण से भगवद गीता सुनी जाए या कृष्ण के जो शिष्य हैं फिर उनके शिष्य फिर उनके शिष्य, हाँ, तो ऐसे चाहे जितने बीच में आचार्य हों, लेकिन अगर परंपरा वही है तो हमें वही संदेश प्राप्त होगा, कोई अंतर नहीं। साक्षात कृष्ण से श्रवण किया जाए या उनकी परंपरा में जो प्रामाणिक आचार्य हैं उनसे श्रवण किया जाए, कोई अंतर नहीं है। तो प्रभुपाद क्या कहते हैं, समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। अगर भगवद गीता समझ ली तो जितने शास्त्र हैं वो सब उसने समझ लिए पहले से, कोई जरूरत नहीं और ज्यादा शास्त्रों को समझने की। गीता महात्म्य में लिखा है, गीता सुगीता कर्तव्य किमन्य शास्त्र विस्तर है, जितने अन्य शास्त्र हैं उनके विस्तार की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर भगवद गीता को आपने सुगीता कर लिया, अगर भगवद गीता को आपने सुंदर गीत अपना बना लिया, सुंदर गीत का मतलब है अच्छी प्रकार से समझ लिया अगर भगवद गीता को, तो अन्य शास्त्रों के विस्तार की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवद गीता क्या है, या स्वयं पद्मनाभ से मुख पद्मादिनिस्थिता, क्योंकि पद्मनाभ भगवान के मुख कमल से ये निकला हुआ है भगवद गीता। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, पाठक को भगवद गीता में ना केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है, यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है, क्योंकि कृष्ण इस भगवद गीता में अपना ही वर्णन कर रहे हैं, जब वे कह रहे हैं अहम और मे मम माम, इस प्रकार से कृष्ण जब अपने लिए शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि मैं मुझे मेरा है कि नहीं मुझको, तो इसका मतलब क्या है, भगवान आप जो है भगवान को समझ रहे हैं, भगवान की बात सुन रहे हैं, इसमें कोई और भगवान के अलावा और कोई दूसरी बात नहीं है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। तो प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं कि कुरुक्षेत्र वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है, इसलिए सबसे पहले शब्द क्या है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये जो कुरुक्षेत्र है धर्म क्षेत्र है। कुरुक्षेत्र का मतलब क्या है, महाराज कुरु जो इस वंश में जो है ना बहुत प्राचीन एक राजा हुए हैं कुरुक्षेत्र, और उनके नाम से ये स्थान पड़ा है कुरुक्षेत्र, है ना। उनके वंश में जो पैदा होते हैं वो कौरव कहलाते हैं, है ना। तो कुरु वंश में जो है ना अर्जुन भी है, इसलिए अर्जुन को भी भगवान ने क्या कहा है, कुरु नंदन, है ना। तो कुरु से जो है ना अर्जुन को कुरु नंदन कहा जाता है, भगवान ने कई स्थानों पर कहा है कुरु श्रेष्ठ कुरु नंदन, है ना। तो कुरुक्षेत्र ये जो है स्थान क्यों पड़ा है, क्योंकि महाराज कुरु की बड़ी इच्छा थी कि इस क्षेत्र को जो है क्या बनाया जाए, धर्म क्षेत्र बनाया जाए। कुरु महाराज की इच्छा थी कि इस क्षेत्र को धर्म क्षेत्र बनाया जाए, मतलब कोई भी व्यक्ति इस स्थान पर आए तो उसको धर्म का फल प्राप्त हो, बिना कुछ किए उसको धर्म का फल प्राप्त हो, तो वो धर्म की खेती करना चाह रहे थे महाराज गुरु। तो इंद्र को जो है मतलब बड़ा आश्चर्य हुआ, और गुरु महाराज क्या कर रहे हैं कि हल लेकर के और जोतना शुरू कर रहे हैं, हल से उस जमीन को जोत रहे हैं। तो इंद्र को जो ना हंसी आती, और इंद्र जो ना बार बार उनको देख करके हंसे और चले जाए, लेकिन महाराज कुरु को जो है ना इससे कोई निराशा नहीं हुई, वो अपने लगे रहे इस काम में। इंद्र कहते हैं आप धर्म की खेती कर रहे हो, ये क्या है, ये कौन सा कार्य है, आज तक किसी ने किया नहीं धर्म की खेती करना। तो फिर भगवान विष्णु आए गुरु महाराज के पास और कहते हैं कि महाराज आप धर्म की खेती कर रहे हो तो इसका बीज तो दो, बीज कहाँ है। तो गुरु महाराज ने अपना हाथ दे दिया भगवान विष्णु को, तो भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उनका हाथ काट दिया, दाहिना हाथ है? और भगवान कहते हैं अभी पर्याप्त बीज नहीं है, और बीज चाहिए इसका। तो गुरु महाराज अपना बायां हाथ भगवान को देते हैं, तो भगवान ने बायां हाथ भी चक्र से काट दिया और कहा अभी और दो बीज, अभी बीज पर्याप्त नहीं हुआ। तो अपना बायां अपना दायां पैर भगवान को दिया, तो भगवान ने दाहिना पैर भी काट दिया चक्र से है? और कहते हैं भगवान अभी पर्याप्त नहीं हुआ बीज, आप और बीज दो। तो बायां पैर दिया, तो बायां पैर को भी काट दिया भगवान ने चक्र से, और भगवान कहते हैं अभी पर्याप्त बीज नहीं हुआ, अभी और बीज दो धर्म का। तो गुरु महाराज भगवान को अपना सिर देते हैं है? तो भगवान विष्णु फिर प्रसन्न हो जाते हैं, फिर उनको वरदान देते हैं, गुरु महाराज को वरदान देते हैं कि अब से जो है ना ये जो कुरुक्षेत्र कहलाएगा और धर्म क्षेत्र कहलाएगा, इस स्थान में कोई व्यक्ति अगर आएगा तो यहाँ आने मात्र से ही उसको धर्म का फल प्राप्त होगा। तो ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, जैसे कि कोई जंगल है मान लो बद्री वन है, तो उसमें जो ना बेर के फल मिलते हैं, कोई व्यक्ति अगर जाएगा तो उसको बेर के फल मिलेंगे है ना, उसे बिना कुछ परिश्रम के उसको वो फल प्राप्त होगा। जैसे कोई आम्र क्षेत्र है, आम का मतलब वहां पर जंगल है, तो वहां जाकर के बिना परिश्रम के आपको आम के फल मिलेंगे है ना। उसी प्रकार से कुरुक्षेत्र ऐसा स्थान है जहां जाकर के आपको बिना किसी परिश्रम के कौन सा फल मिलेगा, धर्म का फल मिलेगा है ना। तो वैदिक काल से प्रभुपाद जी लिखते हैं कि पवित्र तीर्थ स्थल रहा है, इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। हाँ, अब धर्म क्षेत्र का दूसरा मतलब ये भी है कि धर्म क्षेत्र क्यों है, क्योंकि साक्षात कृष्ण है वहां पर है? तो जहां कृष्ण है वहां पर धर्म है कि नहीं। धर्म जो है भगवान के स्तन से उत्पन्न हुआ है, अधर्म भगवान की पीठ से उत्पन्न हुआ है। हाँ, तो इसलिए भी धर्म क्षेत्र प्रभुपाद जी कह रहे हैं। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। संदिग्ध मतलब, संदिग्ध का मतलब क्या, धृतराष्ट्र बहुत संदिग्ध था है? हाँ, उसको संदेह था है? अपने पुत्रों की विजय के प्रति उसको बहुत संदेह था, अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा उन्होंने क्या किया। वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं, फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वो नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो। धृतराष्ट्र स्वयं जो है ना कितना दुष्ट है, वो नहीं चाहता है कि वहां युद्ध में समझौता हो। अगर समझौता होगा तो क्या होगा, पांडवों को उनका हिस्सा मिलेगा, तो धृतराष्ट्र चाहता है कि पांडवों को हिस्सा मिले, है ना। इसलिए उसने क्या कहा, युद्धवा युद्ध की इच्छा वाले मेरे पुत्र पांडवों के पुत्रों ने क्या किया है, तो धृतराष्ट्र स्वयं युद्ध करना चाहता है। धृतराष्ट्र चाहता है कि उसके जो पुत्र हैं वो पांडु के पुत्रों को मार डालें या हरा दें और सब जो राज्य है वो मेरे पुत्रों को प्राप्त हो जाए। इस भावना से धृतराष्ट्र ने ये बात कही है। तो प्रभुपाद लिखते हैं वो नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति यानी भाग के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था, क्योंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है। अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर ना जाने कैसा प्रभाव पड़े। इसलिए धृतराष्ट्र ने क्या कहा, धर्म क्षेत्र, धर्म का क्षेत्र तो कहीं ऐसा नहीं कि उसके पुत्रों में धार्मिक भावना पैदा हो जाए। धृतराष्ट्र को चिंता है अगर मेरे पुत्रों के दिमाग में धार्मिक भावना पैदा हो गई तो समझौता करेंगे तो फिर क्या होगा, पांडवों को उनका राज्य देना पड़ेगा, है ना, तो हमारा नुकसान होगा। इसलिए धृतराष्ट्र जो है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र बोल रहा है कि भाई धर्म क्षेत्र है ये, तो कहीं ऐसा नहीं कि धर्म का प्रभाव मेरे पुत्रों में बढ़ जाए। उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्यात्मा थे। ये धर्म का चित्र है तो धर्म की विजय स्वाभाविक है, तो जो धर्म का पक्ष है यानी पांडव जो के पक्ष में जो है ना ये धर्म क्षेत्र का जो प्रभाव है वो पड़ेगा तो विजय उनकी संभावना विजय की संभावना है। संजय श्री व्यास के शिष्य थे, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकते थे, इसीलिए धृतराष्ट्र ने उनसे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। तो हम ये पहले बता चुके हैं कि व्यास जी की कृपा से संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई, क्योंकि व्यास जी स्वयं धृतराष्ट्र के पास आए थे, धृतराष्ट्र को दिव्य दृष्टि देना चाहते थे कि मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं और तुम जो है देखो इस युद्ध को, क्योंकि ये ऐतिहासिक युद्ध है। लेकिन धृतराष्ट्र ने नहीं देखना चाहा, धृतराष्ट्र ने दिव्य दृष्टि लेने से मना कर दिया, क्योंकि व्यास जी ने कहा कि इस युद्ध में तुम्हारे पुत्रों को जो है अधर्म का फल प्राप्त होगा, तुम्हारे पुत्रों की मृत्यु होगी। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं अपने आंखों से अपने पुत्रों की मृत्यु नहीं देखना चाहता हूं, इसलिए मुझे दिव्य दृष्टि नहीं लेना है, लेकिन मुझे कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो आंखों देखा हाल मुझे सुनाता रहे। तो फिर संजय को व्यास जी ने दिव्य दृष्टि दी। और संजय वास्तव में ये भी हमें समझना चाहिए कि युद्ध भूमि में भी वो जाते थे, युद्ध भूमि में संजय युद्ध करते थे, किसके पक्ष में, कौरवों के पक्ष में है? और बीच बीच में समय निकाल करके धृतराष्ट्र को युद्ध का हाल भी सुनाते थे। और दिव्य दृष्टि होने के कारण संजय को जो है पूरी घटनाओं का ज्ञान होता था कि किसका युद्ध किसके साथ हुआ और कहाँ हुआ कब हुआ, वो पूरा का पूरा जो ना समाचार धृतराष्ट्र को देते थे। और व्यास जी की कृपा से संजय को जो है ये भी वरदान प्राप्त हुआ कि युद्ध में संजय को कोई घाव नहीं लगेगा, ये भी वरदान संजय को प्राप्त हुआ। और संजय को युद्ध का परिश्रम भी नहीं होगा, क्योंकि एक व्यक्ति जो युद्ध कर रहा है तो फिर वो जो है ना बिना विश्राम के फिर कैसे पूरा वर्णन कर सकता है युद्ध का, है कि नहीं, संभव नहीं है। लेकिन व्यास जी की कृपा से ये सब वरदान प्राप्त हुए। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित हैं, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया। हाँ, अब यहां प्रभुपाद जी एक और बात बताते हैं, धृतराष्ट्र ने किन शब्दों का प्रयोग किया? धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र कहने का मतलब क्या है कि क्षेत्र जो है ना कौरवों का है, मेरे पुत्रों का है ये क्षेत्र कुरुक्षेत्र, और माम का वो मेरे पुत्र हैं, और पांडवा पांडु के पुत्र, मतलब पांडु के पुत्र वो मेरे पुत्र नहीं है। जबकि धृतराष्ट्र को सोचना चाहिए कि पांडु के जो पुत्र है चूंकि पिता रहित हैं, उनके पिता पांडु मर गए हैं, तो अपना पुत्र समझ करके, तो पांडु महाराज की जो है ना असामयिक मृत्यु हुई और उनको राज्य का पूरा अधिकार था, धृतराष्ट्र धर्म से अंधे थे इसलिए उनको राज्य का अधिकार नहीं था। तो धृतराष्ट्र को सोचना चाहिए कि जब तक पांडु के पुत्र जो है बड़े नहीं हुए हैं तब तक उनको जो है सुरक्षा करनी है पांडु के पुत्रों की, और जैसे बड़े हो जाएं पांडु के पुत्र तो धृतराष्ट्र क्या करें, राज्य उनको सौंप दें, क्योंकि पूरा राज्य का अधिकार पांडु के पुत्रों को है, ना तो धृतराष्ट्र को है ना धृतराष्ट्र के पुत्रों को है, है ना। लेकिन अभी जो है ना पांडु के पुत्रों से बहुत धृतराष्ट्र की ईर्ष्या है, और पांडु के पुत्रों को धृतराष्ट्र ने कई बार मार डालने की भी योजनाएं बनाई, है ना। तो ये जो है ना धृतराष्ट्र की विषमता है। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मना स्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हों, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ बहुत अच्छी व्याख्या प्रभुपाद जी कर रहे हैं। धर्म क्षेत्र का मतलब क्या है? जहां धर्म के ही वृक्ष या पौधे